और इन नजरियात की खेल में हम अमेरिका के 8 तरीके देखते हैं। अमेरिका ने हर मुल्क से मुकाबला करने के लिए 8 तरीके कार्ड तय कर रखे हैं और इन मुमालिक में ईरान सरे फहरिस्त है। जब हम गेम थ्योरी में इसे खेलते हैं तो इसका पहला तरीका यह है कि ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम से पहले आलमी राय अम्मा बनाई जाए। ईरान ने बगैर किसी वक्फे के इस मैदान में अमेरिका को शिकस्त दी है। ईरान के खिलाफ आलमी राय अम्मा कायम नहीं हो सकी। ये जो आपने अभी देखा है वही सऊदी अरब, सहयूनी हुकूमत, अमारात वगैरह हैं, जो कि पहले से ही अमेरिका के साथ और उसके हमने वाला थे। लिहाजा पहला तरीका क्या है, मुलाहजा करें। दुश्मन पर गलबा करने के लिए अमरीकी मंसूबा नंबर 1, आलमी राय अम्मा का हुसूल और अस्करी झड़प और अकेला लड़ने से परहेज। अमरीका के लिए हमारे खिलाफ राय अम्मा का हुसूल नामुमकिन है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने रहबर मौजम इनकलाब की दानिशमंदी के साथ ऐसा किरदार अदा किया है जिसकी बिना पर अमरीका के लिए मुमकिन नहीं है कि वह हमारे खिलाफ आलमी राय अम्मा को हासिल कर सके। गेम थ्योरी में ये पहला तरीका था। दूसरे तरीके में कहता है कि पहले ईरान को कमजोर किया जाए फिर हमला किया जाए। ये भी अमली नहीं, यानी वो कुछ भी करके ईरान को कमजोर करें और फिर उस पर हमला करें, नहीं कर सकते। 2-3 साल पहले उन्होंने कोशिश की है कि मईशत में हमें कमजोर करें और मईशत में कमजोरी के बाद हमला करें। ये था दूसरा तरीका। और तीसरे तरीके में कहते हैं कि हम फुर्सत का इंतजार करें, कमजोर करने के बाद कोई मुनासिब मौका देखकर हमला कर दें। मिसाल के तौर पर इंतजार कर रहे हैं कि तेहरान में कोई बड़ा जलजला आ जाए, क्योंकि 200 साल से तेहरान में जलजला मौखर रहा है। ये जलजला जब तेहरान में आएगा तेहरान तबाह हो जाएगा, बिल्कुल जैसे मुल्क हेटी में 8 दर्जे का जलजला आया तो ये मदद करने के बहाने अमरीकी वहाँ पहुँचे और जजीरा नुमा मुल्क हेटी पर कब्जा कर लिया। लिहाजा ये कहते हैं कि अगर तेहरान में जलजला आ जाए तो ये बेहतरीन फुर्सत होगी, वहाँ मदद करने के बहाने पहुँच कर कब्जा कर लेंगे। बहरहाल ईरान ने इसके तदारुक के लिए और इससे निपटने के लिए हर तरह का इंतजाम कर रखा है कि बिलफर्ज अगर ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो हमने क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अभी क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इसलिए इस मौजू को नहीं खोलते। उनका कहना है कि ईरान में सन 2008 के जैसा फितना और फसाद शुरू हो, इसमें हम एक मखमली और रंगीन इनकलाब शुरू कर दें और फिर इस फुर्सत से इस्तेफादा करते हुए फौजी हमला कर दें। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। वो जो 2013 में वाकयात रूनमा हुए, इसमें कोई 4-5 हजार नौजवान सड़कों पर आए, गिरफ्तारियां हुई। जब इनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से हैं, किसके हामी हैं, मालूम हुआ कि कोई सिस्टम ना था, कोई सिलसिला ना था। जनाब क्या इस तरह भी कुछ होता है? 8 महीने तक ये लोग फितना करते रहे, तेहरान की सड़कों पर निकलते रहे, इनके सरकर्दा लोगों का व्हाइट हाउस से रابطہ था, इसके बाद भी कुछ ना हुआ। और इस्लामी जमहूरिया ईरान में एक अदद टैंक भी सड़कों पर नहीं लाया गया, लिहाजा वो इस हर्ज और मर्ज के साथ सोच रहा है कि कुछ कर गुजरे। बहरहाल गेम थ्योरी में ये फुर्सत तलबी का इनका तीसरा तरीका, जिसे ईरान ने नाकाम कर दिया। चौथा तरीका नियाबती फौजी कार्रवाई है, यानी प्रॉक्सी वार। अमेरिका चाहता है कि जब हम ईरान को कमजोर कर चुके हैं, आलमी राय अम्मा हासिल कर लें और फुर्सत भी हो, उसके बावजूद हम खुद किसी संजीदा इकदाम में शामिल ना हो बल्कि हमारी जगह दूसरे कुछ लोग हमला करें, क्योंकि हमारा जानी नुकसान ज्यादा हो सकता है। ये जो कुछ दिनों से अमेरिकी रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि ईरान के साथ जंग के नतीजे में जानी नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा है, इस बिना पर कह रहे हैं कि ईरान का फैसला है अमेरिका के साथ जंग की सूरत में अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, लिहाजा अमेरिका खौफ ज्यादा है। इसी वजह से वो कहता है कि ईरान के साथ जंग की सूरत में हम पहले किसी दूसरे मुल्क को आगे करें। आप देखें कि सऊदी अरब और सहयूनी हुकूमत उसे कहते हैं कि तुम आओ और हमारी जगह ईरान से लड़ो, यानी अभी सऊदी अरब और नेतन्याहू कि अमेरिका आए और हमारी जगह पर प्रॉक्सी वॉर करे, हमारी जगह जाए और लड़े। उस तरफ अमेरिका में इतनी जरूरत नहीं, अपनी अफवाज को करीब नहीं कर रहा क्योंकि वो जानी नुकसान से डरता है। चौथा तरीका नियाबती फौजी कार्रवाई। जबकि गेम थ्योरी में अमेरिका का पांचवा तरीका, अमेरिका की तरह हम भी लैंचेस्टर मॉडल से इस्तेफादा करते हैं, यानी बिल्कुल वही तरीकेकार जिस पर अमेरिका और यूरोप वाले कारबंद हैं, हम भी गेम थ्योरी के अंदर हिसाब किताब के लिए उसी तरीकेकार से काम लेते हैं। पांचवी चीज जिसे वो अहमियत देते हैं यह है कि हम ईरान के साथ जंग करने में कम से कम अखराजात को सामने रखें। ये जो वो जंगी अखराजात को कम करना चाहते हैं, इस बारे में सुन लें कि अभी अमेरिका का फौजी बजट इस साल में $700 बिलियन है, यानी तकरीबन हर रोज अमेरिका अपनी फौज पर $2 बिलियन खर्च करता है, जबकि इस्लामी जमहूरिया ईरान की तमाम अफवाज سپاہ پاسداران انقلاب، وزارت دفاع وغیرہ سب ملا کر 8 سے 10 بلین ڈالر بجٹ بنتا ہے، یعنی امریکی فوج کے 6-7 دن کا بجٹ اسلامی جمہوریہ ایران کی تمام افواج کا بجٹ ہے۔ اس حساب سے یہ ایک مذاق ہے، ہم زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 ملین ڈالر خرچ کر رہے ہیں جبکہ وہ 700 بلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں امریکہ مہنگا لڑے گا۔ اگر امریکہ ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے، گیم تھوری کے مطابق ہم نے مسلح افواج میں جس چیز کا اعلان کیا ہے، چونکہ ہمارا مرکز ملک کے لیے جنگی حسابات کو انجام دیتا ہے۔ 2017 کے شائع ہونے والے حسابات کے مطابق جب ٹرمپ برسر اقتدار آیا ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ کیسے چلے گا۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ فوجی لڑائی کے پہلے 6 مہینوں میں امریکہ کا 50 ٹریلین ڈالر خرچ ہوگا۔ افغانستان اور عراق میں امریکی کارروائی پر 7 ٹریلین ڈالر خرچ ہوا تھا، لیکن اگر ایران کے ساتھ امریکہ جنگ کرتا ہے تو 50 ٹریلین ڈالر خرچ ہوگا۔ یہ جو میں حسابات بتا رہا ہوں یہ 2017 کے مطابق ہیں۔ حالیہ نئے حسابات جو انجام دیے گئے ہیں، اس میں عالمی اقتصاد کا قرض 70 ٹریلین ڈالر ہے۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں داخل ہوتا ہے تو پہلے 6 مہینوں میں امریکہ کا جنگی خرچہ 70 ٹریلین ڈالر ہوگا، یعنی عالمی اقتصاد قرض کے برابر، یعنی پورے عالمی اقتصاد کے قرض کے برابر۔ امریکہ اسے جانتا ہے اور ہم ان دستاویزات کو سرکاری سطح پر شائع کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی گیم تھیوری میں لینچسٹر ماڈل سے استفادہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی جان لیں کہ اگر امریکہ نے یہ مذاق شروع کیا تو پھر ایک عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ 70 ٹریلین ڈالر کا ابتدائی خرچہ اور یہ 50 ٹریلین ڈالر 2017 کے حساب کے مطابق ہیں۔ بنا پر ایران کے ساتھ جنگ میں خرچہ کم نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے عرصے میں کمی، امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک دورانیہ معین کر رکھا ہے۔ اس کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی 90 دن۔ فوج اور سپاہ پاسداران میں ایرانی سپہ سالاروں کے اذہان میں جو اسٹریٹجی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ہونے کی صورت میں اسے پھیلا دیا جائے گا، یعنی اگر ایران اور امریکہ کے مابین جنگ 9 مہینے سے زیادہ عرصے پر محیط ہو جائے تو امریکہ اور دنیا کی معیشت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ یہ لڑائی صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوگی، کم سے کم 25 سے 30 ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل بند ہو جائے گی۔ خود امریکی بھی اس بات سے آگاہ ہیں، ہم نے ان کی گیم تھوری کو بھی دیکھا ہے، اور جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ لہٰذا جنگ کی صورت میں اسے تھوڑے وقت میں سمیٹ لینے کا بھی کوئی امکان نہیں پایا جاتا۔ ایران اسے پھیلا دے گا، اور 6ٹے مرحلے میں دفاعی حکمت عملی یہ ہوگی۔ 7ویں نمبر پر امریکہ کہتا ہے کہ جنگ ہونے کی صورت میں ہر میدان میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں پہلا میدان فنی مہارت کا ہوتا ہے، پھر حکمت عملی، اور پھر کاروائی۔ پہلا اسٹریٹجی میدان ہوتا ہے، ان کے اپنے بقول پہلا مرحلہ ٹیکنیکل لیول، دوسرا ٹیکٹیکل لیول، اور تیسرا آپریشن لیول، چوتھا اسٹریٹجک لیول۔ جب جنگ پہلے مرحلے میں ہو تو وہ ایک جگہ پر بمباری کرے گا، ادھر سے ایک جگہ پر بمباری ہوگی، ایک سطح اوپر آ جائیں تو جرنیل جنگ میں شامل ہو جائیں گے، ایک اور سطح اوپر آ جائیں تو 2 افواج جنگ میں داخل ہو جائیں گی، بری کے مقابلے میں بری فوج، بحری کے مقابلے میں بحری فوج، فضائی فوج کے مقابلے میں فضائی فوج، اور اگر ایک اور سطح اوپر آ جائیں تو 2 ملک بھی جنگ میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب جنگ ہر سطح پر پہنچے تو یہ ہماری مرضی سے ہونا چاہیے۔ ایران اس چیز کو ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دے گا، اس لیے کہ ایران جنگ شروع کرنے والا نہیں۔ اگر امریکہ جنگ شروع کرتا ہے، جس سطح سے بھی وہ شروع کرتا ہے، پھر فیصلہ ایران کے ہاتھ میں ہے کہ نچلی سطح پر چلا جائے یا اوپری سطح پر جا کر جنگ کرے۔ لہٰذا یہاں پر بھی جنگ کی مہار اور نکیل ایران کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ 7ویں مرحلے کی دفاعی پالیسی۔ اب آئیے 8ویں مرحلے کی طرف۔ 8ویں مرحلے میں دفاعی صورتحال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے حالات کو خرابی کی طرف لے جانا، آگ بھڑکانا یا بجھانا ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ، اور اس کے مراحل یہ ہیں کہ ابھی حالات معمول پر ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے ابتدائی حالات کو کہا جائے گا تناؤ کی کیفیت، اور اس کے بعد والے مرحلے کو کہا جائے گا پریشانی کی حالت، اور 4ویں مرحلے کو بحران کہیں گے۔ معمولی سا تناؤ، تناؤ سے پریشانی، اور پریشانی سے بحران۔ بحران کی کنٹرول مینجمنٹ کہتی ہے کہ بحران سے پریشانی کی طرف، اور پھر اسے تناؤ تک لے آئیں، اور پھر معمول کی حالت تک پہنچا دیں۔ ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان حالات معمول پر ہیں، اگر ایک جھڑپ ہو جائے تو تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم ان مراحل میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ خود کریں، یعنی ہم چاہیں تو تناؤ کی کیفیت پیدا ہو، ہم چاہیں تو پریشانی پیدا ہو، ہم چاہیں تو بحرانی حالت پیدا ہو جائیں۔ या जब चाहे ये निज़ाम उल्टा चलना शुरू हो जाए। जबकि ईरान ने मुख्तलिफ मशकों में इन तमाम मराहिल का तजुर्बा कर लिया है और हमारे इस्लामी इनकलाब के सिपह सालारों का कहना है कि इन तमाम मराहिल यानी मामूल से तनाव, तनाव से परेशानी और फिर बहरान तक इसकी मुदीरियत हमारे हाथ में होनी चाहिए और रहेगी। लिहाजा सातवें और आठवें तरीके में हम भी हर हवाले से दिफा कर सकते हैं। और अब नवा नुक्ता यह है कि उनका कहना है कि फतह हमारी है और शिकस्त ईरान के लिए है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कभी ना होगा, इसलिए कि इससे पहले वाले तमाम नुकात और तरीक़ाकार पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज और सिपाही पासदारान ने और मुतालिका इदारों में इन मजामीन पर मुतालियात अंजाम दिए जा चुके हैं, अमली मशकें कर चुके हैं, तमाम जहाज से इन्हें देखा जा चुका है। फरमानदाए कुल्ले कुवा यानी कमांडर इन चीफ रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामेनाई ने जो अहदाफ मुतय्यन फरमाए हैं इन पर काम हो चुका है। हमारे मुताबिक ये आठ नुकात काबिल अमल नहीं है। फौजी हमले की सूरत में मंजर कशी कैसी होगी? फर्ज करें इनमें से एक नहीं होता। अमेरिका कहता है कि आलमी रायमा नहीं चाहिए और बस हमला कर दो, या इनमें से नंबर दो नहीं होता, मसलन कहता है कि फुर्सत को छोड़ दो और हमला करो, या इनमें से नंबर तीन नहीं होता और कहता है कि प्रॉक्सी वॉर को छोड़ो, हम खुद ही हमला करते हैं, या नंबर चार नहीं होता और कहता है कि कोई बात नहीं, जितना भी खर्च हो जाए हम हमला करेंगे। इन आठ में से जितने भी नुकात को अमरीका छोड़ता जाएगा उतना ही कमजोर होता जाएगा। मैं फिर तकरार करता हूँ कि वो अपने बनाए हुए मॉडल में, मॉडल बॉमिन, लैंचेस्टर और गेम थ्योरी के तमाम कवायद में अमेरिका अगर इन आठ नुकात से इस्तेफादा कर ले फिर भी ईरान के मुकाबले में पूरे नौ महीने के अंदर शिकस्त खा जाएगा इंशाल्लाह। अगर इनमें से किसी को छोड़ देगा तो फिर इसकी अपनी हालत मजीद बदतर हो जाएगी। लिहाजा ईरान दिफाई हालत इख्तियार करने के मराहिल से निकल चुका है। ईरान अभी बढ़ चढ़ कर हर बात का जवाब दे सकता है, यानी नाकाबले तलाफी नुकसान कर सकता है, खौफ के तवाजुन पर अमल कर सकता है, काबिले इनेताफ रवैया भी अपना सकता है। आपने इसकी मिसाल को देखा है, मामूली से बहरान तक और फनी महारत के मैदान से स्ट्रेटेजिक मैदान तक ईरान इन तमाम मराहिल से गुजर कर दुश्मन की यकीनी तबाही तक पहुंच सकता है। लिहाजा अस्करी दिफाई कुव्वत का मसला हल है।